प्रीति बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसकी बातें सुनकर शकुंतला जी के चेहरे के भाव कोमल हो गए। शायद अपनी बेटी का दुख सुनकर माँ की ममता जाग उठी थी, पर अब भी समाज क्या कहेगा इसका डर उस प्यार पर भारी पड़ गया था। माधुरी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, और धीरज जी वापस जा चुके थे वहां से। राजेश अपनी बहन की ये हालत देख नहीं सका। उसने प्रीति को अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तूने कुछ गलत नहीं किया बेटा, मेरी बहन कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, तेरा कोई दोष नहीं था, अब कोई तुझे कसूरवार नहीं ठहराएगा, किसी चीज के लिए तुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, अब वही होगा जो तू चाहेगी। तुझे अबॉर्शन नहीं करवाना तो कोई तुझे मजबूर नहीं करेगा, तुझे दूसरी शादी नहीं करनी तो कोई तुझ पर प्रेशर नहीं बनाएगा, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, ये घर जितना मेरा है उतना तेरा भी है, और जब तक तेरा भाई जिंदा है कोई तुझे इस घर से जाने को नहीं कहेगा, मैं उठाऊंगा तेरे और तेरे बच्चे की जिम्मेदारी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। राजेश की बात सुनकर माधुरी की त्योरियां चढ़ गईं। इसी बात का डर था उन्हें, इसीलिए शकुंतला जी को बहका रही थी और अपनी बातों में फंसाकर प्रीति से जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी। पर अब राजेश की बात सुनकर उनकी छाती पर सांप लौट रहा था। उसका बस चलता तो अभी प्रीति को डंक मारकर यहीं उसका काम तमाम कर देती। मन में इतना जहर भरा था प्रीति के प्रति जो उसके चेहरे पर झलकने लगा था, पर राजेश के सामने वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी जिससे उन्हें उनके बुरे इरादों की भनक भी लगे, इसलिए जहर के घूंट पीकर खामोश रह गईं। शकुंतला जी भी कुछ कह ना सकीं। राजेश के सीने से लगी प्रीति अब भी सिसक रही थी। वहां सन्नाटा पसर गया था और सन्नाटे में प्रीति की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। राजेश प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ देर ही हुई थी कि धीरज जी वहां आ गए। उन्होंने राजेश को देखकर गंभीरता से कहा, हमने प्रीति के ससुराल में बात कर ली है, वे लोग इन्हें और इसके बच्चे को अपने पास रखने और सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, तो आप आज ही इन्हें इसके ससुराल छोड़ाएं, वैसे भी गलती उनकी है तो सजा हमारा परिवार क्यों भुगते, उनका बेटा धोखा देकर भागा है तो अब वही अपनी बहू और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे, और यही ठीक है, इससे दोनों परिवारों की इज्जत बची रहेगी। एक बार फिर अपनी बेटी के ऊपर इज्जत को रखा गया। ये देखकर प्रीति के लबों पर बेबसी और दर्द भरी मुस्कान फैल गई। माधुरी और शकुंतला जी तो इस फैसले से बड़ी खुश हुईं। माधुरी की तो जैसे मन की मुराद पूरी होने को थी, पर राजेश को धीरज जी का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो बिल्कुल इस बात का पक्षकार नहीं था कि बस घर की इज्जत को बचाने के लिए प्रीति को उस घर वापस भेजा जाए, इसलिए उसने तुरंत ही एतराज़ जताते हुए कहा, पापा छोटी उस घर में नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी भैया, प्रीति ने एकदम से दृढ़ता से कहा तो सब उसको देखने लगे। प्रीति ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, मैं वापस जाऊंगी भैया, वहां भले ही सब अनजान है पर मेरे अपनों से ज्यादा साथ दिया है उन्होंने मेरा, उन्होंने मुझ में कमियां नहीं निकाली, अपने बेटे के जाने के लिए मुझे दोष नहीं दिया, उन्होंने झूठी सहानुभूति नहीं दिखाई मुझसे बल्कि दिल से मेरा साथ दिया, मुझे संभाला जबकि मेरे अपने यहाँ दो चेहरे लेकर घूम रहे हैं, मेरी हालत जो उनकी ही देन है उस पर रोते भी हैं और मुझे ही सबके लिए जिम्मेदार ठहरा कर कोसने से भी पीछे नहीं रहते, यहाँ तो मैं सब पर बोझ बन गई हूँ, इसलिए ये लोग मेरा अबॉर्शन करवाकर मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, इससे बेहतर तो मैं वहीं चली जाऊं, कम से कम वहां वे मेरे बच्चे को मारने को तो नहीं कहेंगे, मुझ पर अपना फैसला तो नहीं थोपेंगे, मेरे विधाता नहीं बनेंगे, मुझे दूसरी शादी करने को नहीं कहेंगे, मैं बोझ नहीं बनूंगी किसी पर भी, खुद से काम करके अपने और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगी और वहां रहूंगी जहां कद्र होगी हम दोनों की, लोग बोझ नहीं समझेंगे वहां हमें, वहां मुझे इज्जत मिलेगी जो यहां रहकर कभी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगी, प्लीज आप मेरे फैसले में मेरा साथ दे दीजिए, मैं अब एक पल भी यहां नहीं रहना चाहती, मुझे वापस वहां छोड़ाइए। उसके शब्द दर्द से सने थे और ये दर्द उसके अपनों का दिया था, उसका ये फैसला उसकी तकलीफ को दर्शा रहा था जो उसको यहां उसके अपने परिवार अपनी माँ की कड़वी बातों से पहुंची थी। इतना सब सुनने और देखने के बाद उसके रिक्वेस्ट को राजेश ठुकरा नहीं सका। उसकी बातें सुनकर उसकी खुद की आंखें नम हो गईं। उसने प्रीति के सर पर हाथ रख दिया। अगर तुम्हारा यही फैसला है और इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहां रोकूंगा नहीं, तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा, पर वहां जा रही हो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर से तुम्हारा रिश्ता टूट गया, और कोई नहीं पर तेरा भाई अब भी जिंदा है, और जब भी तुझे मेरी जरूरत हो बस एक बार मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा तेरे पास, मैंने हमेशा बस तेरा भला चाहा है, अब भी बस यही कहूंगा कि जहां रहो खुश रहो। प्रीति की आंखें छलक आईं, बैकपैक ही था, वो राजेश के साथ घर से निकल गई। पिछली बार जब गई थी तो कितना रोई थी सबके गले लग लग कर, पर इस बार उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं निकली और ना वो किसी से मिली, एक शब्द नहीं कहा किसी से, पलटकर उन्हें या घर को देखा तक नहीं, जैसे सबसे नाता तोड़कर जा रही हो। आज उसने मन ही मन इस घर से जुड़े हर रिश्ते को तिलांजलि दे दी थी। एक राजेश ही रह गया था जिसको वो अपनों में शामिल कर सकती थी, पर कब तक साथ देगा वो उसका, उसकी शादी हो गई है अपना परिवार बनेगा तो नए रिश्तों के बीच शायद वो भी उसको भूल ही जाएगा। यही सोचकर प्रीति ने उसके प्रति भी नीरस बने रहने का फैसला कर लिया था और निकल पड़ी थी फिर उन्हीं रास्तों की तरफ जहां से उसकी जिंदगी का नया संघर्ष शुरू होने वाला था।